मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 अगस्त 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, कल के ही विषय को अब आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप सबसे एक अनुरोध किया था, इनफैक्ट सच पूछिए तो वह अनुरोध एक प्रकार से आप लोगों के ऊपर एक बोझ डालने जैसा ही था कि आप सब भगवद गीता के 10वें अध्याय के कुछ श्लोकों को पढ़ लें। मैं ऐसा दोस्तों जानबूझकर कहता हूं, इनफैक्ट इसका कारण क्या है मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप हो सकता है कि सोच रहे हों कि जब हमको ही पढ़ना है, हमको ही समझना है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है। होता यह है कि देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है ये लगातार बदलती रहती है, शतरंज की बिसात की तरह, कोई भी एक स्थिति ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। अब सवाल यह है कि जीवन की सारी स्थितियों में आपको ही निर्णय लेने हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि अच्छा अब ये है तो अब ऐसा सोचना चाहिए, अब ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, नॉट एट ऑल, आपको ही निर्णय लेने होंगे। बड़े बड़े मामलों में ठीक है आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन छोटे जो मामले होंगे, दैनिक मामले होंगे, उनमें आप क्या करेंगे? ये बात अलग है कि वो मामले तो दैनिक हैं, अभी आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, निर्णय आपको लेना है, लेकिन आगे चल करके पता लगा कि उसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं राम को, पूरे के पूरे रामचरितमानस में हम राम को देखते हैं कि जब भी निर्णय लेने का वक्त आता है वो तुरंत निर्णय लेते हैं, वो बैठते नहीं हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, टालते नहीं हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? ऐसा संभव देखिए तभी हो पाता है जब हमारे अपने मस्तिष्क के पास इस तरह की क्षमताएं पैदा हो जाएं। तो क्षमताएं आएंगी कहां से? सीधी सी बात है कि वो क्षमताएं इसी से आती हैं कि जब हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, अपने तरफ से निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से आप शतरंज के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं और हम इस लायक बन पाते हैं कि हम अपने बारे में खुद सही सही निर्णय लेने की स्थिति तक पहुंच सकें। और दोस्तों केवल इसी बात को ध्यान में रख करके मैं कभी कभी आप लोगों को इस तरह के होमवर्क दे दिया करता हूं। लेकिन चलिए, खैर आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो आपने एक बहुत अद्भुत बात उसमें देखी होगी, आपने महसूस किया होगा कि जब कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि मैं क्या हूं, तो आप देखिए कि वो शायद ही किसी पक्ष को छोड़ते हों, शायद ही, मैं सामान्य रूप में कह रहा हूं। जैसे वो क्या कहते हैं, वो जब नदियों को लेते हैं तो कहते हैं मैं नदी तो हूं लेकिन सामान्य नदी नहीं हूं कि कोई भी नदी, ऐरी गहरी नदी, मैं अगर नदी हूं तो मैं गंगा हूं, मैं पर्वत हूं तो मैं हिमालय हूं, मैं अगर पक्षी हूं तो मैं गरुण हूं जो सर्वोत्तम हो सकता है, कोई बात नहीं मैं मछली भी हूं लेकिन मैं मछलियों में मैं मगर हूं, मैं पशुओं में मैं सिंह हूं, महीनों में मैं अगहन का महीना हूं और ऋतुओं में फिर मैं वसंत हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो आप देखते हैं व्यक्तियों में मैं राजा हूं, गायों में मैं सुरभि हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो इस तरह से जड़, चेतन, जल, अंतरिक्ष, नक्षत्र, आप देखिए व्यक्ति, पशु, पक्षी, ज्यादा से ज्यादा पक्षों को वो लेने की कोशिश करते हैं। जो पक्ष बाई दिवे छूट गए हैं, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको छूटे हुए पक्ष दिखाई दे जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनमें से कुछ नहीं है। देखिए इसका सार क्या है, हम सीधे सार पर आते हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि मेरा जन्म किस योनि में हुआ है, कि मैं पक्षी हूं, कि मैं जानवर हूं, कि मैं व्यक्ति हूं, मैं क्या हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इससे पड़ता है कि जिसमें भी मेरा जन्म हुआ है, क्या मैं उस जन्म की जो सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है, जो एक सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है, उसे पा सका हूं। अगर नहीं पा सका हूं तो मेरे लिए संभावनाएं हैं कि मैं उसे पाने के लिए कोशिश करूं, और जैसे ही मैं पा जाता हूं, आप यूं कह लीजिए कि मैं कृष्ण तत्व बन जाता हूं, मैं राम तत्व बन जाता हूं। बस दोस्तों केवल इस छोटी सी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आप सबसे यह अनुरोध किया था। अब विचार करने के लिए आपके पास एक होमवर्क हो सकता है कि आप उसमें जो एक एक तत्व बताए हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो आप तो थोड़ा सा सोचिए कि भैया पीपल की क्या विशेषता है, तो आपको मजा आएगा कि पीपल की ऐसी क्या विशेषता है जो सभी वृक्षों में सर्वोत्तम है। तब आपको ये पता लगेगा, आप इस बात को इनफैक्ट सही मायने में महसूस कर सकेंगे कि अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या बन गए हैं ये मायने रखता है, ये भी मायने नहीं रखता कि हम क्या बन सकते हैं। आप कुछ भी हों, बनने की कोई सीमा नहीं है, उसकी सर्वोत्तम स्थिति है, वहां तक हर कोई पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। और ये जो प्रक्रिया है ये आसान प्रक्रिया नहीं है, और राम ने कुल मिलाकर यही किया है कि उस प्रक्रिया को अपनाया। मित्रों, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। देखिए, जब राम वनवास जाते हैं तो उनकी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी, वो 18 साल के आसपास की ही उनकी उम्र थी। सोचिए, 18 साल का एक जो बालक होता है वो कितनी क्षमता रखता है सोचने समझने की, जोखिम में अपने जीवन को डालने की। लेकिन चलिए, वो तो राजकुमार थे। देखिए, होता यह है कि कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन। ठीक है, आप पूरे के पूरे रामचरितमानस को पढ़ जाइए, रामचरितमानस में कहीं भी आपको एक शब्द ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा, यहां तक कि संकेत के तौर पर भी नहीं मिलेगा कि दशरथ ने राम को कहा हो कि भाई ये वरदान मांगा गया है, अब तुम इसे पूरा करो और तुम वनवास के लिए चले जाओ। दशरथ ने कहीं भी नहीं कहा है। आप बहुत बारीक तौर पर भी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं भी ये संकेत नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी नहीं। बल्कि आपको मालूम होगा कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को चले जाते हैं तो अपने मंत्री सुमंत को भेजते हैं चुपके से समझा करके कि भैया ठीक है, वो लोग चले गए हैं, थोड़ा सा घुमा उमा करके और फिर वापस ले आना अयोध्या से, तो उनका मन भी रह जाएगा और बात भी बन जाएगी, लेकिन मैं बिना राम के नहीं रह सकता। तो दशरथ ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम वनवास को जाओ। कहने की ठीक है, हम भरत को राज सिंहासन दे देते हैं, ये उन्होंने कहा, स्वीकार किया, लेकिन 14 वर्ष के वनवास के वरदान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो दशरथ ने तो आदेश दिया ही नहीं राम को कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो फिर राम क्यों चले गए? ये सोचने की बात है, राम चले क्यों गए, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्या कोई बड़ा उद्देश्य था? और देखिए, जब वो माता कौशल्या के पास सुबह सुबह जाते हैं, एक बड़ा बड़ा करुण और बड़ा प्यारा सा प्रसंग है कि कौशल्या माता तो अपने काम में लगी हुई हैं, उनको हर्ष है कि उनका बेटा सुबह सुबह राज्याभिषेक उसका होना है, राजा बनने जा रहा है। तो राम पहुंचते हैं तापस वेश में, कौशल्या के सामने खड़े हैं और कौशल्या नीचे अपना काम कर रही है, देख नहीं रही है कौशल्या, बकायदे वर्णन है, क्योंकि देखती तो चौंक जाती कि भैया तुमकी ये राजसी वेश की जगह ये तापस वेश कैसे धारण कर लिया है। नहीं, वो देख नहीं रही है। और पहला उनका वाक्य है कि बेटा राज सिंहासन होना है तुम्हारा, कलेवा तो कर लिया, मां का हृदय देखिए, यही पुरुष है, यही उनकी लीला है। बिल्कुल जैसे कोई सामान्य सी मां पूछती है, उसी तरह से कौशल्या भी राम से पूछ रही है, क्योंकि कौशल्या के लिए राम पुत्र है और उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही कि बेटा तुमने कलेवा तो कर लिया ना, कि पता नहीं राज सिंहासन की प्रक्रिया में, राज्याभिषेक की प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाए, कहीं बेटा ऐसा ना हो कि भूखा ही बैठा रह जाए, कितना मार्मिक है। वहां पर फिर राम जो उत्तर देते हैं वो कहते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू। दोस्तों, इसे समझने की जरूरत है। वो राम ये नहीं कह रहे कि पिता दिन मोहि वनवासु, कह सकते थे, उनको लग ही नहीं रहा है कि मुझे वनवास दिया गया है। वो तो कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू, उन्होंने तो मुझे वन का राज्य दे दिया है। आप देखिए, वन के वास को उनके अपने मन ने, अपने चिंतन ने, अपने विचार ने वन के राज्य में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, ये राम थे, यही राम है। तो अब उन्होंने क्यों कहा कि कानन राजू, ये समझने की बात है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अगर मैं इस सिंहासन से बंधा रह जाऊंगा तो फिर तो यहां तो कुछ नहीं है, ऐश्वर्य है, सुविधाएं हैं, मेरे जीवन का अंत यही हो जाएगा, इससे आगे मैं और करूंगा क्या? नहीं, अभी मुझे प्रोसेस करना है, अपने को संस्कारित करना है, अपनी चेतना को और प्रबल बनाना है। और वो कैसे बनेगा? वो संघर्ष से बनेगा। तो उन्होंने संघर्ष को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, उनको भेजा नहीं गया है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये बात वहां मिलेगी। तो दोस्तों, इस पर हम लोग और भी आगे बातें करेंगे। आप सब भी अपने अपने ढंग से इन सब विषयों पर विचार करें, आपको भी खूब मजा आएगा। तो अब इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब फिर ढेर सारी बातें होंगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।